हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समनीत कौर। और जैसे कि आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने होंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी मोशन के बारे में, उसके रेफरेंस पॉइंट के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज आती हैं, डिस्टेंस आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था। फिर हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था डिटेल में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स दे रखे गए हैं बुक में, तो हम उन न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मीन्स दैट कि दो मोशंस हैं और इनमें डिफरेंस क्या है और ये किस लिए यूज की जाती हैं। मीन्स दैट कि हम इसको किस तरह से पहचान पाएंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म मोशन है। इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक फनी सा एग्जाम्पल दूंगी, जो कि आप अपने साथ रिलेट कर पाओगे, कि समझ पाओगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि आप इस टाइम पे क्लास में बैठे हैं और आप सभी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मतलब स्कूल ड्रेस पहनी हुई है। तो अभी आपने सभी ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, तो इस टाइम पे आप सभी क्या लग रहे होगे, सेम, बिकॉज आप सभी ने सेम कपड़े पहने हैं। ठीक है, सेम ड्रेस पहनी है, तो आप इस टाइम पे सभी सेम लग रहे हो। ठीक है, मीन्स दैट कि आप आइडेंटिकल हो। ठीक है, आप सेम लग रहे हो, आप सभी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म। मीन्स दैट कि आप सभी एकदम आइडेंटिकल लग रहे हो, सेम लग रहे हो, तो आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सो इस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म। और मान लो कि आपकी क्लास में कोई एक दो बच्चे हैं, ठीक है, वो ना सिविल ड्रेस में आ गए, मतलब कि अपने घर के कपड़ों में ही आ गए हैं, स्कूल ड्रेस नहीं पहनी है। तो उस टाइम पे वो आपकी क्लास में अलग से लग रहे होंगे। मान लो किसी का आज बर्थडे है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्लास में अलग सा लग रहा होगा। ठीक है, तो वो आपकी क्लास में मैच नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि आप सभी ने सेम ड्रेस पहनी है, उसने अलग ड्रेस पहनी हुई है। तो उस टाइम पे आपकी क्लास में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मीन्स दैट कि आप सभी में डिफरेंस आ जाएंगे थोड़े 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 थोड़े। मीन्स दैट कि उसने अलग ड्रेस पहनी है, आपने अलग ड्रेस पहनी है, फिर आप उसकी ड्रेस को देख के बोलोगे कि हाँ आज तो बर्थडे है, तो तेरा बर्थडे है, तो आज हम तूने दूसरी ड्रेस पहनी है। ठीक है, आज हमारा बर्थडे नहीं है, हमने ये ड्रेस पहनी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी क्लास में नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फिजिक्स में देखें, तो ये भी एक तरह की सेम चीज ही बनती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाती है, थोड़ी जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी न्यूमेरिकल टाइप्स में आ जाती है, तो समझने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना ये टॉपिक। तो पहले हम लाइन टू लाइन समझेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसके बारे में आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है और इसको हम कैसे रिलेट कर पाएंगे बुक के साथ। तो अब हम रीड करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन। उसमें लिखा गया है, कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे कहा कि हम कंसीडर करते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब सभी अपने अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, उसके बाद लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट सेकंड है, 1 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, तो उसके बाद डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर इन 1 सेकंड। उसके बाद क्या लिखा गया है, 5 मोर मीटर्स इन नेक्स्ट सेकंड। अब वो कहते हैं कि अगले 5 मीटर में वो फिर अगले 1 सेकंड में वो फिर 5 मीटर कवर करता, मीन्स अगला 1 सेकंड और उसने 5 मीटर और कवर किया है। ठीक है, इन 3rd सेकंड भी वो 5 मीटर कवर करता है, फिर 4th सेकंड में भी वो 5 मीटर कवर करता है, मीन्स फर्स्ट सेकंड में भी उसने 5 मीटर कवर किया, फिर 2nd सेकंड में भी उसने 5 मीटर कवर किया। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड, 2nd सेकंड, 3rd सेकंड एंड 4th सेकंड। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि एक चीज कॉमन आ रही है। वो चीज क्या कॉमन आ रही है, इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है उसने इक्वल कवर किया है। पहले सेकंड में भी 5 किया, फिर अगले सेकंड में भी उसने 5 सेकंड कवर किया, फिर अगले सेकंड में भी उसने 5 सेकंड 5 मीटर कवर किए। तो मीन्स दैट कि हर सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर की कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आना शुरू हो गया होगा कि हाँ कि ये 5 मीटर 5 मीटर ही कवर कर रहा है, इससे क्या आएगा। आगे बुक में है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आ जाती है। उसमें वो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड टू बी एज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि यहाँ पे इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि हर सेकंड में 5 मीटर कन्वर्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है, हर सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर कवर, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब हर टाइम वो 5 मीटर ही कवर कर रहा है। मान लो पहले 5 किया फिर 10 आ गया तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, कवर कर रहा है, तो सेकंड्स भी हमारे पास सेम है, फर्स्ट सेकंड में फिर सेकंड्स का डिफरेंस भी सेम आ रहा है 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास डिस्टेंस भी सेम आ रहा है तो हमारे पास टाइम भी सेम आ रहा है, तो मींस दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स टाइम, सो इट कॉल्ड टू बी एज यूनिफॉर्म मोशन। मींस दैट कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन कॉल्ड टू बी स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल जो है वो बहुत स्मॉल है, मतलब कि 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, तो ये बहुत ही स्मॉल है। तो ये हमने जस्ट एन एग्जांपल ली हुई है कि हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है बट हमने एज एन एग्जांपल ले चुकी हुई है, तो हम एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि आप हर 10 मिनट में 20 किलोमीटर कवर करते हो, तो अगले 10 किलोमीटर में भी आप 20 किलोमीटर कवर करोगे, ये हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हो जाती हैं कि हम इतने मिनट में इतना कवर कर लेते हैं। तो उसका बारे में वो बता रहा था कि हाँ हमने एज एन इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले ली हुई है, ठीक है, हम 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं, इन अ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब वो बोल रहे हैं कि कई बार हम ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टाइम तो सेम रह रहा है बट डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है बार बार, ठीक है। मान लो कि आप घर से निकले स्कूल के लिए तो आपको 1 घंटा लगता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको टाइम तो उतना लगेगा, कई बार डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है, कई बार आपको लॉन्ग कट से जाना पड़ता है, शॉर्ट कट से जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस टाइम पे आपका डिस्टेंस चेंज होता रहता है बट टाइम तो उतना ही लगेगा। तो ये बात की गई है यहाँ पे। आगे देखते हैं उसने क्या लिखा है, For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, there are some instances of non-uniform motion. ठीक है, अब इसमें उसने क्या कहा गया है, कई बार आप कह सकते हो क्राउडेड स्ट्रीट में फंस गए हो, मतलब कि जाम वगैरह लग गया है तो आप वहां पे फंस गए हुए हो, ठीक है। तो अगर कई बार होता है कि आप स्लोली वॉक करना शुरू कर देते हो तो कई बार थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कहता है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने यूनिफॉर्म में क्या पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर हमने नॉन यूनिफॉर्म में क्या पढ़ा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस चेंज हो जाए, हो सकता है, पर जो हमारा टाइम है वो सेम रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल की थी कि 5 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में, तो वो तो हमारी यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है, ठीक है। मान लो कि अब वो कहता है कि हम हर 1 सेकंड में 10 किलोमीटर कवर करेंगे पहले में, फिर दूसरे सेकंड में हम 15 में करेंगे, तो तीसरे में हम 16 कर सकते हैं, ठीक है, तीसरे सेकंड में 16 मीटर कन्वर्ट कर, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाती है। मीन्स दैट कि हर सेकंड में हमको सेम तो करना चाहिए था बट यहाँ पे सेम डिस्टेंस वो कवर कर नहीं रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हमारे पास डेफिनेशन आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको एक एक्टिविटी दे रखी गई है, एक्टिविटी 8.5। तो हम एक्टिविटी 8.5 को देखते हैं, उसमें लिखा गया है द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल 8.1। पीछे चलेंगे तो पीछे हमारे पास एक टेबल आता है, टेबल आता है 8.1। क्या उसमें क्या दे रखा है, एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट द वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हमको यहाँ पे देखना है इसमें जो हमारे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो यहाँ पे हमको बात करनी है। अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम को देखें तो पहले हमारे पास टाइम था 9:30, ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम आया 9:45, फिर उसके बाद हमारे पास आया 10 बज गए हैं, ठीक है। तो अगर हम 9:30 और 9:45 का डिफरेंस निकाले तो कितना आया, कितने मिनट्स का डिफरेंस होगा, 15 मिनट का। 10 बजे का डिफरेंस और 9:45 का डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 15 का, ठीक है। हम इसमें क्या पैटर्न देखते हैं, हम देख रहे हैं कि टाइम का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है ना, टाइम का डिफरेंस सेम आ रहा है तो मीन्स दैट क्या होगा, यहाँ पे वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आ रहे हैं, मतलब 15-15 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो हमारा टाइम है वो इक्वल इंटरवल का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम ए का डिस्टेंस देखें, मतलब ए ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो पहले उसने 10 किया, फिर उसके बाद उसने 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हाँ 10 के बाद 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40, इन सभी में डिफरेंस तो 10-10 का है, तो मीन्स दैट कि इस बंदे ने जो डिस्टेंस है वो भी इक्वली ट्रैवल किया है, इक्वल इंटरवल्स आ रहे हैं, 10-10, 10-10 इक्वल इंटरवल्स आ रहे हैं, तो मीन्स दैट यहाँ पे हमको क्या पता लग रहा है, हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो कौन सी है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हमको क्या बोलती है, वो हमको बोलती है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अगर हम 10 मीटर से 20 मीटर तक जाते हैं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, 9:30 से 9:45 तक जाएं तो हमने कितना ट्रैवल किया, 15 मिनट में हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर, 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। इससे हमारे पास क्या आता है कि हाँ हमने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो यूनिफॉर्म मोशन कैरी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बी का, तो वो देखते हैं, पहले उसने ट्रैवल किया 12 किलोमीटर, पहले 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 19 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 7 आया। फिर उसके बाद उसने 23 ट्रैवल किया, तो 19 और 23 का डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। पहले इंटरवल में उसने 7 मीटर ट्रैवल किया, फिर सेकंड इंटरवल में उसने 4 मीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया अनइक्वल, ठीक है। मतलब कि अब इस डिस्टेंस में कुछ हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा है, कि जो हमको पैटर्न चाहिए वो हमारा पैटर्न बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो सेम चल रहा है, तो टाइम है वो इक्वल इंटरवल के हिसाब से ही चल रहा है, पर जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मींस दैट कि जो हमारा जो डिस्टेंस है, जो बी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब टाइम तो सेम लगा रहा है वो, पर जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बैठ जाती है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन टू बी एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मींस दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, वो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी 8.5 एक्टिविटी खत्म होती है, तो हम फर्दर चलेंगे, फर्दर बात करते हैं कि आगे कौन कौन सी एग्जांपल दे रखी गई है बुक में। वहां पे लिखा गया है लुक एट द सिचुएशन गिवन इन द फिगर 8.2। अब यहाँ पे फिगर 8.2 में देखना है हमको कि 8.2 में दे क्या रखा है। If the bowling speed is 143 km per hour in the figure 8.2a, what does it mean? What do you understand by the signboard? अब यहाँ पे उसने हमको कहा गया है कि यहाँ पे जैसे दो डायग्राम दे रखी गई है, पहला एक टीवी है और दूसरा एक रोड की डायग्राम दे रखी गई है। अब उसने कहा है कि इन दोनों डायग्राम्स को आप एनालाइज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो पहले हम अगर टीवी वाले की एग्जाम्पल देखें तो टीवी वाला एग्जाम्पल हमको क्या बता रहा है, ठीक है, बॉलिंग स्पीड दे रखी गई है, बॉलिंग स्पीड का दे रखी है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हमारी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स दैट कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो उसको हम क्या बताते हैं, स्पीड। और स्पीड हमको किसमें दे रखी गई है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है वो हमारा किलोमीटर में कवर हो रहा है और जो हमारा टाइम है वो आवर में कवर हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बॉलिंग स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर। 140 किलोमीटर पर आवर मीन्स दैट एक घंटे में इन वन आवर वो कवर करता है 140, ठीक है, 140 किलोमीटर। उसके बाद 143 दिया गया है किलोमीटर पर आवर, फिर 135 दिया गया है किलोमीटर पर आवर, 145 दिया गया है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हो, यहाँ पे हम ये पता कर पा रहे हैं कि जो हमारी जो बॉलिंग स्पीड है वो चेंज हो रही है, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं रह पा रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो चेंज हो ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आ जाती है कि कभी हमारी जो स्पीड है कम हो रही है, कभी हमारी स्पीड ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाती है। उसके बाद उसने क्या कहा गया, उसके बाद यहाँ पे एक रोड का साइन बोर्ड दे रखा गया है। अब यहाँ पे रोड का साइन बोर्ड हमको क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हमको रोड का साइन बोर्ड ये बता रहा गया है, अगर हम कार की बात करें तो कार की स्पीड रहनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो हर घंटे में सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही इससे कम हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि हर किलोमीटर में हमको इतना ही कवर करना है, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारी जो मोशन है वो चेंज हो जाएगी, हमारा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो बात कर पा रहा है हमारे यूनिफॉर्म मोशन की, कि हाँ आपको स्पीड इतनी ही रखनी है 50 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड रखनी, इससे कम नहीं रखनी, इससे कम आप रख सकते हो पर इससे ज्यादा नहीं रखनी है। सिमिलरली वो ट्रक की बात कर रहा है कि ट्रक की स्पीड हमको रखनी है 40 किलोमीटर पर आवर की, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है, आप कम रख सकते हो तो कम रख लो पर ज्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी मोशन आ जाती है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो इन दोनों डायग्राम्स में हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, हमारे पास डिफरेंस आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। पहले जब हमने बॉलिंग वाले की देखी तो उसमें जो हमारी स्पीड है वो बार बार चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो हमारे पास वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आती है कि हाँ मतलब टाइम तो सेम रह रहा है बट हमारी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो ही जा रहा है बार बार, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पीड लिमिट आती है कार की और ट्रक की। हम क्या देखते हैं कि कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और ट्रक की 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तो यहाँ पे टाइम तो सेम रह रहा है बट जो हमारा डिस्टेंस है वो भी सेम रह रहा है, इक्वल इंटरवल्स रह रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात आ जाती गई है। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे एक चीज ना नोटिस करने वाली है, वो ये है कि आपको बताया गया है कि जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और जो ट्रक की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस आता है कि हाँ ट्रक की स्पीड हम कम कर दे और कार की क्यों ज्यादा कर दे। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया होगा कि हाँ ट्रक की स्पीड क्यों कम है और कार की स्पीड क्यों ज्यादा है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर ये है कि जो ट्रक होता है वो बहुत हैवी होता है, जब कोई चीज बहुत हैवी हो जाती है उसको रोकने के लिए बहुत टाइम भी लगता है साथ में, मतलब उसको टाइम ज्यादा लगता है जब उसको कहीं रोकना पड़े। मान लीजिए कि कोई बंदा है, ठीक है ना, वो बहुत ही हेल्दी है तो वो बहुत ही तेज से भागता हुआ आ रहा है, मान लो कि आपको उसको रोकने आधे रास्ते में, जब आप उसको रोकने जाओगे तो उसको रोकने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। अगर मान लो कि बहुत ही पतला बंदा है, ठीक है ना, बहुत ही पतला बंदा है ठीक है ना, अगर आप उसको रोकना चाहोगे तो वो बहुत इजीली रुक जाएगा, ठीक है, बट उसकी जगह अगर कोई बहुत ही हेल्दी बंदा हो, ठीक है, अगर उसको आप रोकने जाओ उसको बहुत टाइम लगता है रोकने के लिए। तो वही चीज हमारे पास ट्रक की है, ट्रक बहुत हैवी होता है, उसमें बहुत सारा हैवी लोड भी डाला जाता है। तो मान लीजिए कि ट्रक को कहीं पे अचानक ब्रेक लगानी और उसकी स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें ब्रेक जब लगाएगा उस ब्रेक को लगते लगते भी बहुत टाइम लगेगा। मान लो कि अगर उसको एक मान लो कि जो बंदा अगर एक मीटर दूर है उससे, अगर वो उसी टाइम पे ब्रेक लगाएगा तो तब उस वो एक्सीडेंट होके रहेगा, तो क्योंकि ब्रेक लगने में टाइम लगता है, क्योंकि हैवी है, बहुत वेट ज्यादा है, ब्रेक लगने में टाइम लगेगा। वही अगर सिमिलरली अगर हम कार की बात करें तो कार का वेट ट्रक के हिसाब से बहुत लाइट होता है, और उस कार में हम इतना वजन कैरी भी नहीं कर पाते, इतना वेट भी नहीं होता है कार में। तो जब भी हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो बहुत इजीली ब्रेक लग जाती है, आराम से ब्रेक लग जाती है, इतनी टेंशन नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, मीन्स दैट कि ट्रक में हमको ज्यादा टाइम लगता है ब्रेक लगाने में, ठीक है, ब्रेक लगने में, तो कार में जल्दी लग जाता है। इसी की वजह से जो हम कार का जो टाइम है वो, जो कार की जो स्पीड है वो हम ज्यादा रखते हैं, और जो हमारे ट्रक की स्पीड है वो हम कम रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस खत्म होता है इन दोनों पिक्चर्स का। तो अगर हम फर्दर रीड करें तो फर्दर हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो अगर उनका डिस्टेंस भी होगा तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उनको कैलकुलेट करने में। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ स्लोली, ठीक है। कुछ चीजें जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत फास्ट मूव कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्लोली स्लोली मूव करते हैं। मान लगे अगर हम कार और प्लेन का एग्जाम्पल नहीं, और आपको दिल्ली जाना है बाय कार और प्लेन, जो बंदा दिल्ली जाएगा बाय प्लेन वो तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा दिल्ली। बट अगर कोई जो अगर कोई है, ठीक है, अगर उसको बाय कार जाना है दिल्ली तो उसको एटलीस्ट 6-7 आवर्स चाहिए होंगे। मान लो कोई इंसान है वो जम्मू से या फिर हिमाचल से दिल्ली जाएगा तो उसको 8-9 आवर्स तो लगेंगे दिल्ली जाने में, 6-7 आवर्स तो लगेंगे ही दिल्ली जाने में। तो अगर वो प्लेन से जाएगा तो उसको एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे जाने में। तो ये हमारे में डिफरेंस आता है। जैसे प्लेन जो है वो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो कार है वो लेट डिस्टेंस कवर करेगी, उसको टाइम लगेगा। तो वो यहाँ पे दे रखा गया। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, ठीक है, कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रेट पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आपको किसी चीज का रेट निकालना है, रेट क्या होता है हमारे पास, रेट हमारे पास होता है स्पीड। हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। जब हमको रेट निकालना होता है तो हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस, फिर निकालते हैं टाइम, तो वहां से निकलता है हमारे पास रेट। पहले निकलेगा डिस्टेंस, फिर निकलेगा टाइम, फिर निकलेगा रेट। तो आगे दे रखा गया है द क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। यहाँ पे क्या क्वांटिटी आती है स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन टू बी एज स्पीड। जैसे यहाँ पे दे रखा गया है एन ऑब्जेक्ट इज टू बी फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज टू बी नोन एज द स्पीड। अगर हम इसको आसान भाषा में लिखे या आसान लैंग्वेज में लिखे तो हमको लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मीटर में होगा और उसके बाद जो हमारा टाइम है सेकेंड में होगा। पर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दे रखा गया, पर का मतलब क्या है, मीटर है फिर उसके बाद पर है फिर उसके बाद दे रखा है सेकेंड, तो पर का मतलब है डिवाइड। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा टाइम है वो डिवाइड में है, तो इसलिए हम उसको यूज करते हैं, इन इंग्लिश हम यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड। तो पर का रेफरेंस क्या होगा, डिवाइड में। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा गया है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड दे रखा गया है, एस की पावर -1 दे रखी गई है, -1 दे रखी गई है, मतलब कि वो डिवाइड का है, मतलब नीचे था। तो जब भी कोई डिवाइड में चीज होती है अगर हम उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं तो उस टाइम पर उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। उसके बाद इसका एक और फॉर्म है वो है मीटर स्लैश एस, तो जो स्लैश का मतलब है वो है डिवाइड का, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक हमारे पास आ गया था मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो कि आपको कई बार क्वेश्चन में दे रखा जाता है, क्वेश्चन में दे रखा जाता है किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, बिकॉज किलोमीटर पर सेकेंड कोई क्वांटिटी नहीं बनती है, कोई यूनिट नहीं बनता है, तो इसको हम कुछ चेंज करना पड़ता है। तो हम सेकेंड्स को या तो आर में चेंज कर सकते हैं या किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, ताकि वो इक्वल हो जाए और हम उसको यूज कर पाए फर्दर के लिए। यहाँ पे ये चीज आती है, उसकी यूनिट्स आ गए, ऐसे यूनिट आ गया, ऐसे यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आर है, फिर उसका सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसके बारे में इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बता दी गई है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको स्पीड निकालना था, ऑब्वियसली हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए होगी, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात आती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू नॉट टू बी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे दे रखा गया है कि जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की कॉन्स्टेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि कॉन्स्टेंट हो या ना हो, कॉन्स्टेंट होगी तब भी चलेगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगी तब भी चलेगा, मतलब अगर हमेशा सेम रह रही है तब भी चलेगा, और अगर सेम नहीं भी रह रही है तो तब भी चलेगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट विल नॉट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे दे रखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कई बार जो है हमेशा, मतलब मोस्टली केसेस में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही आता है, मतलब उसका टाइम भी चेंज हो रहा होता है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होता है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आ जाती गई है। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे वो बात दे रखा गया है कि एवरेज स्पीड की बात आ जाती गई है। एवरेज स्पीड की बात हम क्यों लेके आए, पहले तो रीजन पता करते हैं कि हाँ एवरेज स्पीड अगर आया है तो क्यों आया है। हमारा स्पीड से भी तो काम चल रहा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से भी तो हमारे आंसर्स निकल रहे थे, पर हमको अचानक ही एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ गई। तो हमें एवरेज स्पीड की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जब हमारा डिस्टेंस चेंज कर रहा होगा तो हमारे पास डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यूज आती हैं। जब अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे जब वो इंसान था इतनी, इसकी कितनी स्पीड थी, जब यहाँ पे था तो कितनी स्पीड थी। तो इसलिए हमने इसका एवरेज स्पीड का कंसेप्ट निकाला है कि हाँ हम सभी डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, सभी टाइम को ऐड कर देते हैं, तो हम पता कर लेंगे कि इस बंदे की एक्चुअल स्पीड क्या थी, मतलब हम अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी स्पीड इतनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसलिए हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट निकाला गया है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड को कैसे डिनोट किया गया है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन बाय इट। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, हमारे पास आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया पूरे जर्नी में और उसको पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, उन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, आगे दे रखा गया इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन इट्स स्पीड बी इक्वल्स टू वी। यहाँ पे हमारे पास स्पीड को डिनोट कर दिया गया है वी के साथ, और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने एस के साथ डिनोट किया है, और जो टाइम है वो टी के साथ डिनोट किया है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दे रखी गई है, लेट अस कंसीडर दिस बाय आवर एग्जाम्पल। A car travels a distance of 100 km in 2 hours. मतलब वो 100 km cover करता है 2 hours में. उसके बाद its average speed is 50 km per hour. ठीक है? The car might not travel 50 km per hour all the time. Sometimes it might be travel faster and sometimes it may be lower than its actual speed. ठीक है? अब यहाँ पे उसमें हमको दे रखा गया कि 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है 2 घंटे में। ठीक है, अब हम 100 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास कितना आएगा, 2 5 10, 5 आ गया तो 0 आ गया, इट्स 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने लिखा क्या है, द कार माइट नॉट ट्रेवल इन 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑल द टाइम। मतलब कि जरूरी थोड़ा कि हम कार को 50 किलोमीटर पर आवर सारी जर्नी में कवर किया, हमने 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर में किया कवर किया हो, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमने इसको 50 किलोमीटर पर आवर में कवर किया हो, कभी लेस भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात भी कर सकते, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते जब तक हम कुछ ट्रैवल नहीं कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रैटिकल एग्जांपल आ जाती है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक थ्रेटिकल एग्जांपल आ गई कि हाँ 100 किलोमीटर है, 2 घंटे में ट्रैवल किया, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आ रहा गई, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, बट जो हमारे पास थ्रेटिकल वैल्यू है वो क्या बोलती है, 50 किलोमीटर पर आ आएगी। पर अगर हम एक्चुअली ट्रैवल करें तो हम कई बार थक जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, कई बार हम जोश में गाड़ी चलाते हैं तो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो डिपेंड करता है, थ्रेटिकल वैल्यू 50 बोलती है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो उसकी अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये चीज वो कह रहा है, कभी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, कभी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 8.1। तो हमारे पास आगे एग्जांपल है, उसमें क्या दे रखा गया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन ट्रैवल अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स। मतलब पहले 16 मीटर कवर किए 4 सेकंड में, फिर उसके बाद फिर से 16 मीटर कवर किए 2 सेकंड में। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 16 एंड 16, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 32। उसके बाद उसने टाइम कितना लिया, पहले आया हमारे पास 4, फिर आया हमारे पास 2 सेकंड्स, ठीक है। अब टोटल टाइम करेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ गया, 6 सेकंड्स। तो अब हमारे पास आ गया 6 सेकंड। अब 32 को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करें तो कितना आएगा, क्योंकि 6 के टेबल में तो 32 जाएगा नहीं, तो हमारे पास आंसर तो पॉइंट में आएगा। तो अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड कैसे आया, क्योंकि हमको डिस्टेंस जो दे रखा था वो मीटर में दे रखा था, और जो हमारा टाइम था वो सेकंड्स में दे रखा गया था। तो दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर कितने आया, 5.33 मीटर पर सेकंड। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, हमारी एवरेज स्पीड हो जाती है 5.33 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने आज पूरा, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास आता है कि हमने इसमें बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन को समझा कि वो क्या होती है, मीन्स दैट कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और या हमारा टाइम भी अगर अलग अलग हो जाए, अनइक्वल हो जाए, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर इसमें हमने हमको बुक में एग्जांपल दे रखी थी बॉलिंग स्पीड की, स्पीड जब चेंज हो रही है तो उसमें डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है। तो उसके बाद हमने ट्रक की एग्जांपल ली, ट्रक की स्पीड जो है उसमें 40 दे रखी गई है, जो कार की स्पीड है 50 दे रखी गई है। तो यहाँ पे भी हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात की। उसके बाद हमने इसके बारे में एवरेज स्पीड के बारे में बात की कि एवरेज स्पीड होती क्या है। हमने यह बात की एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, मतलब कि डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो टाइम कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमने एवरेज स्पीड के बारे में बात की। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल दे रखा गया था, उसको डिस्कस किया कि हाँ अगर हमको डिस्टेंस दे रखा गया है, 2 डिस्टेंस दे रखा गया है इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, तो हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड कितनी आती है। तो आगे इस पूरे लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आई होप सभी को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझ लग गई होगी, इनको इनका कंसेप्ट समझ में लग गया कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। थैंक यू। इन फर्दर लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इसकी डायरेक्शंस के बारे में, स्केलर के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्केलर वेक्टर्स के बारे में बात भी करेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। थैंक यू। बाय बाय।